أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جلسے کا وقت جتنا قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے اسی قدر وقت کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ جوں جوں جلسہ قریب آیا وقت نے چلتے چلتے دوڑنا شروع کیا اور اب دوڑتے دوڑتے اڑنے لگا ہے. اور جب جلسہ آ جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ چلا کب گیا. اس تیزی سے وقت گزر جاتا ہے کہ وہ کارکنان جو پہلے مختلف قسم کے فکروں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ مشکل ذمہ داریاں کیسے ادا ہوں گی, وہ آن واحد میں ادا ہو بھی جاتی ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جلسہ کب آیا تھا اور کب چلا گیا. اور جب جلسہ آ کے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے ایک بڑی گہری اداسی چھوڑ جاتا ہے. ایسی گہری اداسی کہ ربا کے در و دیوار سے اس وقت اداسی ٹپک رہی ہوتی ہے. پہلے جب قافلے آ کر جایا کرتے تھے اور نعرہ تکبیر سے بعض لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے ہوئے جب گاڑیاں روانہ ہوتی تھیں تو میں نے دیکھا کہ بہت سے کارکنان درویا کھڑے خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے. اتنا گہرا دکھ مہمان پیچھے چھوڑ جاتے تھے کہ اس کا کوئی باہر کی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی. میں نے سوچا کہ یہ جذبہ یہ حسن خلق کہاں سے ہم نے پایا, تو ذہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمین کے اس شعر کی طرف منتقل ہوا پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت. ابھی تو مہمانوں کی آمد آمد ہے لیکن ایک عارف باللہ ایک مہمان نوازی کے اعلیٰ خلق پر فائز انسان ان کے جانے کے بعد جو غمگین ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا, ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں تو اس غم کا احساس پہلے ہی دل میں جنم لے چکا ہوتا تھا. تو بعد میں جانے پر آپ ہی کے ادنا غلاموں کا مہمانوں کے جانے پر غم محسوس کرنا یہ تو ایک روایت ہے جو ہم نے ورثے میں پائی ہے. इंसानी फितरत तो एक ही रहती है, बच्चे में उसका इजहार मुख्तलिफ तरीक पे होता है, एक बाले गारिब बिल्ला के अंदर उसका इजहार एक मुख्तलिफ तरीक पर होता है। मुझे याद है हमारा एक भांजा बद्दी जो आजकल नाइजीरिया में लेक्चरर हैं, कमर सुलेमान अहमद, वो बचपन में जब अंडा खाया करते थे तो उनको इतना पसंद था कि अंडा खाते खाते अभी निसफ तक नहीं पहुंचा होता था तो रोने लग जाते थे, और हम जान के छेड़ने की खातिर उनका जवाब बड़ा प्यारा लगा करता था, उनसे पूछते थे कि बब्बी रोते क्यों हो, तो जवाब देता था कि अंडा खत्म हो जाएगा, यानी खत्म भी नहीं कह सकता था, इतनी छोटी उम्र थी, कि मुझे ये गम लग गया है कि ये अंडा जो शुरू कर बैठेंगे ये खत्म हो जाएगा। तो दरअसल सारी जिंदगी का फलसफा यही है, जो चीज आती है वो खत्म हो जाती है, और इसी फलसफे का नाम जिंदगी है। अगर ये ना हो तो दुख भी फिर खत्म ना हो। कैसा हसीन तवाजुन अल्लाह ताला ने, कैसा अदल कायम कर रखा है। खुशियां भी आती हैं और खत्म हो जाती हैं, बड़े बड़े दुख भी आते हैं जिनसे इंसान समझता है कि मैं कभी गुजर ही नहीं सकूंगा, वो भी आके खत्म हो जाते हैं। तकलीफों के अदवार भी इसी तरह आनी जानी हैं, और जिंदा और आरिफ कौमें जानती हैं कि ये वक्ती तकलीफें, ये सब्र, ये आजमाइशें, ये सब आनी जानी हैं, निकल जाएंगी, इनको दवाम नहीं है, क्योंकि तकदीर इलाही इसी तरह पर जारी है। बस इन चीजों से जहां गम भी पहुंचता है वहां हौसले भी बड़े बुलंद होते हैं, यकीन और अज़्म भी पैदा होता है। इस तारीफ के बाद अब मैं एक दो बातें रब्बा के जलसे की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक कहना चाहता हूं, जिनमें आने वाले और जाने वाले सभी शरीक हैं। सड़कों पर क्योंकि गैर मामूली तौर पर आबादी बढ़ने की वजह से रश हो जाता है, हजूम हो जाता है, एक अम्बोह खड़ा हो जाता है बाज़ दफा, इसलिए मैं याद कराना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सड़कों के हकूक बयान फरमाए हैं उनका ख्याल रखें। इस्लाम एक ऐसा कामिल मजहब है कि हर चीज जो बनी हुई हो इंसान की जिंदगी से किसी रंग में भी ताल्लुक रखती है उसके मुतालिक तफसीली तालीम दी गई है, यहां तक कि सड़कों के हकूक और बाजारों के हकूक भी कायम फरमाए गए। उन हकूक में से एक हक ये है कि बाजारों में मजलिसें ना लगाया करें, क्योंकि जब बाजारों में मजलिसें लगती हैं तो कई किस्म की बुराइयां उससे पैदा होती हैं मुआशरे में, और फिर आने जाने वाले मुसाफिर, वो लोग जिनकी खातिर बाजार बनाए गए थे खरीद व फरोख के लिए, उनके असल काम में ये मजलिसें मुखर हो जाती हैं। तो जो चीज भी असल में मुफिल हो उसी का नाम गैर मुनसिफाना फेल है। तो बाजारों का आदल ये है कि आप वहां उतनी देर रहें जितनी देर वहां रहना जरूरी है, उतनी देर बैठें होटलों में जितनी देर होटल में बैठना जरूरी है, मजलिसों के अड्डे वहां ना बनाएं, और अगर बैठना पड़ता है कहीं, रुकना पड़ता है कुछ देर के लिए, लाजमन रुकना पड़ता है, तो उस वक्त भी जिक्र इलाही में मसरूफ रहें, दीन की बातें करें, ताकि रब्बा का माहौल अल्लाह ताला के जिक्र से महक उठे। दूसरी बात यह है कि जब आप चलते हैं बाजारों में तो कारकुन आपको कहते हैं कि आप ये रास्ता अख्तियार करें, वो ना करें, वो अख्तियार करें, ये ना करें, तो उस वक्त दो किस्म की बाज़ दफा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बाज़ोकात कारकुनान तहक्कुम इख्तियार कर लेते हैं, मोहब्बत और आजी से समझाने की बजाय वो तहक्कुमाना रंग इख्तियार करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो लोग भी जिनको तआवुन की आदत है बाज़ दफा मिजाज की वजह से भड़क उठते हैं। इंसानी मिजाज अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्मों के पैदा किए हैं, बाद में बड़ी जल्दी भड़क उठते हैं, उनका बीमारियों से भी ताल्लुक होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो बेख्तियार हो जाता है और फिर बड़ी बड़ी सख्त बातें भी कह देता है। तो अव्वल तो कारकुनान को तहजीब के दायरे में रहना चाहिए, अखलाक के दायरे में रहना चाहिए, और जहां तक मुमकिन हो मोहब्बत और प्यार के साथ समझाएं। रास्ता एक सबके दरमियान एक मुश्तरक चीज है, इसलिए इंतजामी दिक्कतों के पेश नजर अगर हमें बाद लोगों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि थोड़ी देर ठहरे या इस तरफ चलें उस तरफ न चलें, मस्तूरात की तरफ न चलें मर्दों की तरफ चलें, ये उनकी सहूलत की खातिर है। और रस्ते के हकूक में ये बात इसलिए दाखिल है कि रस्ते के हकूक का फलसफा ये है कि हर आने जाने वाले के लिए आसानी पैदा की जाए, तो इज्तमाही आसानी पर इंफरादी आसानियों को कुर्बान किया जाता है। इसलिए ये इंतजाम किसी तहकुम के, किसी जबरदस्ती के, किसी शाही के मजर नहीं होते, बल्कि अवामी महदूद के लिए बाज अफराद से दरख्वास्त की जाती है कि आप इज्तमाही तौर पर अपने नफ्स को कुर्बान करें। एक आला मकसद के लिए कुर्बानी एक अदना चीज की, ये एक बुनियादी फलसफा है जिंदगी का। तो जब इज्तमाहीत के मुकाबले पर इंफरादियत आएगी तो फिर इंफरादियत को कुर्बान होना पड़ेगा, लेकिन बहसियत मजमूई इज्तमाहीत की हिफाजत भी अफराद को फायदा पहुंचाती है। इज्तमाहीत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अफराद से कुलियतन अलग कोई ऊपर की फजा में बस रही हो, वो आपके फायदे सारे इज्तमाहीत को पहुंच रहे हैं और आप महरूम रह रहे हैं, हरगिज ऐसी बात नहीं। इज्तमाही फायदे से मुराद ये है कि हर फर्द बशर को फायदा पहुंचे और एक शख्स उस मौजूद फायदे से ज्यादा ना इस्तफादा कर जाए, बाकियों के हिस्सों को नुकसान ना पहुंच जाए। तो बिलआखिर ये फायदा हर फर्द की तरफ ही लौटता है, इसलिए तावुन की रूह ही बेहतर है और आपके अपने और मफाद के अंदर है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे लोग भी आए हैं जो उसने अखलाक के साथ बात करने के बावजूद भी भड़क उठे और कहें हमने जाना है, तो ठीक है हमको जाने दीजिए। जब तक हकूमत रस्ते के ऊपर ऐसी पाबंदियां आयद ना करे कि फलां रस्ते से फलां का गुजरना जरूरी है, फलां का गुजरना जरूरी नहीं, जो पब्लिक जगह है, जो हमारी जायदाद नहीं है, मतलब जलसा का हमारी जायदाद है, यहां हमें पूरा हक है इंतजाम करने का, रोकने का, किसी को दाखिल करने का, मगर सड़कें तो हमारी जायदाद नहीं है। वहां ऐसी सूरत में आपको अपने दायरा इख्तियार से तजावुज नहीं करना चाहिए। हुकूमत के मुतलका इदारे हैं, वो तआवुन पर आमादा हैं, आप उनसे तआवुन करें, उनसे तआवुन हासिल करें और उनकी तरफ मुंतकिल किया करें ऐसे मसाइल, बजाय इसके कि अपने हक में कानून लें। ये इस्लाम की अखलाकी तालीम के भी खिलाफ है और हिकमत के भी खिलाफ है। तीसरी बात इस जमन में मैं ये कहूंगा कि उस वक्त अगर कोई तलखी के साथ बोलता है तो आप आगे से तलखी ना करें, यानी कारकुनान, और प्यार के साथ मोहब्बत से समझाएं। सब्र के अंदर बड़ी ताकत है, इंकिसार में बहुत बड़ी ताकत होती है, और अगर इंकिसार और तकब्बुर का मुकाबला हो तो लाजमन इंकिसार जीता करता है अगर सब्र साथ शामिल हो जाए। इसलिए अपने अंदर ये दो अखलाक आला कद अखलाक की आला कदरें पैदा करें, इंकिसार लेकिन सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, पूरी तरह हिल्म के साथ आप इसको अख्तियार करें तो इंशाल्लाह ताला इससे बड़ा फायदा पहुंचेगा। जहां तक मेहमानों के अमूमी हकूक का ताल्लुक है, उसमें हिफाजती नुक्ता निगाह भी शामिल है। बाज औकात हमने देखा है जलसा सलाने पर बाद लोग ये समझकर कि मेला ठेला है और लोग गाफिल होंगे, उनको लूटने के लगे लिए आते हैं। चुनाचे एक दफा मुझे याद है इस इंतजाम में मैं भी शाम मुतल्लक था, बहुत से जेब कुतरे अरबा में आ गए, एक बकायदा मुनज़्ज़म गिरोह था और एक दो दिन बहुत मुश्किल पड़ी हमें, यहां तक के उस मुहावरे के मुताबिक सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही मुलाजिम रखा जाए, वो चोर की अदाएं बेहतर समझता है। तो एक ऐसा शख्स काबू आया जो किसी जमाने में इस गिरोह से ताल्लुक रखता था उसने चंद मिनटों के अंदर अंदर सारे जोधपुत्र पकड़वा दिए। तो बात यह है कि इस मौके पर और भी कई किस्म के खतरात पैदा हो सकते हैं, कई किस्म की बदनीयतें लोग लेके आते हैं, चोर उचक्के उठाएगी और कई बदली तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले, कई फितने पैदा करने वाले। तो इन सब के खिलाफ आपको पूरी तरह शऊर के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इस दिन में सबसे अहम दिफा तो दुआ है, क्योंकि दुआ की बरकत शामिल हो तो अक्सर मुखालफाना तदबीरें खुद ही बातिल हो जाया करती। पता उस वक्त लगता है जब वो नाकाम हो चुकी होती है, और दुआ ना हो तो मामूली तदबीरें भी बड़े बड़े हादसों में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए बकसरत दुआ करें कि इन तमाम मख्फी खतरात से अल्लाह ताला हमें महफूज व मामून रखे। दूसरा, बाशऊर तौर पर हर शख्स आंखें खोल कर रहे। मोमिन के मुतल्लिक ये ख्याल जो आम मुहावरा है कि बुलहुन होता है, बेवकूफ होता है, ये नहायत ही जहलाना मुहावरा है, तारीखी की पैदावार है, नूर की पैदावार नहीं है। नूर की पैदावार तो वही मुहावरा है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया कि मोमिन की नजर से डरो, वो खुदा के नूर से देखता है, वो सरायत कर जाती है मोमिन की नजर गहराई में और मख्फी चीजों को पा जाती है। तो इसलिए हर मोमिन को अपनी बसीरत को और अपनी बसारत को तेज करना चाहिए और होशियार रहना चाहिए, बाखबर रहना चाहिए कि माहौल में क्या हो रहा है। अजनबी आदमी को बेवजह मुजरिम समझना तो कोई जिहानत नहीं, लेकिन अजनबी को तकलीफ दिए बगैर उसके एहतमाली खतरे से महफूज रहना जिहानत है। और बाज दफा अजनबी आदमी से जब बात की जाए, उससे गुफ्तगू की जाए, तो ये भी फायदा होता है कि अजनबी की जरूरत आपके सामने आ जाती है। यानी ये बदजमी पर बात मबनी नहीं है कि आप किसी अजनबी से पूछें कौन हो और क्या बात है, कहां से आए हो। वाकईतन आप जब उससे बात करते हैं, उससे ताल्लुक बढ़ाते हैं, तो दो फायदे पहुंचते हैं। एक तो ये कि अगर वो बदनीयत से आया हो तो आपको मालूम हो जाता है, एक जहीन आदमी समझ जाता है, और अगर खुद जरूरतमंद हो तो उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। दुनिया में आजाद ममालिक में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो इसी उसूल पर काम कर रही होती है। चुनाचे एक दफा मुझे कुछ तजर्बा हुआ, हम शिकागो से निकलते बहुत पीछे रह गए वक्त से, यानी 3 बजे निकलना था। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी ट्रैफिक है कि 6 बज गए, 6 बजे निकलना था तो रात के 9 बज गए निकलते। जहां पहुंचना था वो 2500 मील का फासला था, इसलिए रात तकरीबन 2 बज गए जब हम अभी अपनी मंजिल में भी नहीं पहुंचे थे। तो हमने फैसला यही किया कि थोड़ी देर यहां आराम किया जाए। हम मोटर रास्ता करके उस शहर में जगह ढूंढ रहे थे, और वो निस्बतन छोटा कस्बा था इसलिए वो जल्दी सो गया था, वरना अमरीका के बादशाह तो 2-3 बजे तक आराम से जागे रहते हैं। कुछ देर के बाद मैंने महसूस किया कि एक मोटर मेरे पीछे लग गई है, क्योंकि मैंने बहुत उसको दाज देने की कोशिश की, जिस तरफ मैं मुड़ता था वो पीछे आ जाते थे। यहां तक कि मैंने मुनासिब यही समझा कि अब खुल के बात होनी चाहिए, अगर कोई शरीफ आदमी है तो फिर ठीक है, उसको शरारत का मौका इसी शहर में मिले, बाहर निकल के फिर क्यों मिले। क्योंकि मैंने मोटर रोकी और उतर गया तो अंदर से एक पुलिस वाला उतरा, और उसने सलाम करके बड़ी माजरत से कहा कि आपको तकलीफ देना मकसूद नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या बात है, आप क्यों आहिस्ता आहिस्ता जगह जगह फेर रहे हैं, कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। और बड़े अखलाक से उसने बात की, उसका मकसद भी पूरा हो गया और मेरा मकसद भी पूरा हो गया। मैंने उसको कहा कि हम सोने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और कोई मिल नहीं रही, तो उन्होंने कहा मेरे साथ तशरीफ लाएं, मैं भी आपको जगह दिलवा देता हूँ। क्योंकि वो जानता था उन जगहों को, वहां हमें लेके गया और एक बड़ी अच्छी रात ठहरने की जगह मुहैया कर दी। तो ये जो आजकल तरक्की याफ्ता कौम है, उनमें रफ्ता रफ्ता बाज अखलाक भी तरक्की कर गए हैं, उनमें से ये हुस्न माशरत का एक अखलाक है, खुल्क है। तो आप भी पहले ही बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम है, इतनी तरक्की याफ्ता कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुस्ने खुल्क और हुस्ने सीरत खुद सिखाया है। तो ये मिसालें इसलिए नहीं है दे रहा कि इनकी पैरवी करें, मैं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूं और आपको ये बता रहा हूं कि वो सुन्नत ऐसी प्यारी सुन्नत है कि जब गैर भी उसकी पैरवी करते हैं तो हुस्न पा जाते हैं। तो अपनों को तो ज्यादा तवज्जो और ज्यादा खलूस के साथ उस सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। इसलिए इस पहलू से बेदार मर्जी के साथ आप हर नावाकिफ जिसके मतलब आपको ख्याल है कि ये बेमकसद फिर रहा है उससे रब्ता पैदा करें, उसके साथ ख्याल रखें उसका, अगर उसकी कोई जरूरत है तो वो पूरी होनी चाहिए। अगर कोई काबिल फिक्र बात सामने आए तो मुतलका अफसरान के बाद पास वो बात पहुंचानी चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक ये पहलू है जो इस रंग में हम सब मिलके मेहमान भी और मेजबान की खिदमत कर सकते हैं। एक और पहलू है खिदमत का, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बयान करना चाहता हूं कि इसी जमीन में बाज मेहमान अपनी सादगी में लूटे जाते हैं, हालांकि मोमिन को इस किस्म की सादगी जेब नहीं देती। हम मुझे तजुर्बा है मेहमान नवाजी के इंतजाम के साथ मुंसलिक रहने का, और मेरे सामने कई ऐसी बातें हैं जो इसकी वजह से बड़ी तकलीफ पहुंची, बड़ा बड़ा नुकसान उठाया है बाज एनवी मेहमानों ने अपनी सादगी में। एक टेप रिकॉर्डर लेके आया हुआ था बेचारा तकरीरें रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो सुन रहा था तो उसको उसने एक आदमी दौड़ आया कि आपके फलां दोस्त जो आपके साथ वहां जब बातें कर रहे थे वो कहते हैं रिकॉर्ड करके लिए टेप रिकॉर्डर दें, उसने उसी वक्त पकड़ा दिया, हालांकि वो आदमी ना जान ना देखा ना जाना और वो लेकर गायब हो गया। तो जब दोस्त मिले उन्होंने कहा तुमने तो थोड़ी देर के लिए मांगा था वापस तो करो, उन्होंने कहा कैसा टेप रिकॉर्डर मुझे पता ही कुछ नहीं, बाद में पता चला कि यही वाकयात और जगह भी हुए इसी किस्म के। तो बहुत से मेहमानों का सादगी में नुकसान हो गया। एक आदमी एक प्यामगा में आया कि फलां मेहमान साहब जो हैं उनकी बस जा रही है और वो अपना बिस्तर और सामान छोड़ गए हैं तो फौरी तौर पर दे दें, वो आ नहीं सकते मैं लेने के लिए आ गया। उस वक्त जो मेजबान या मेहमान बैठे हुए थे सारे उनने कहा ठीक है, उसी वक्त बस्तर उठाए उसको साथ लगवाया और वो चोर साहब थे जो उठा के भाग गया। तो इसलिए बेदार मर्जी की इन मानों में भी जरूरत है, अपना दिफा खुद करें। इतने बड़े इंतजाम में इंतजामिया पर पूरा इन्हिसार कर देना कि वो इस काबिल होगी कि आपकी हर तरह मदद कर सके, ये तस्वीर ही गलत है। जो नुकसान आप अपना खुद करेंगे उसमें इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। इंतजामिया की कोशिश तो है इंशाअल्लाह ताला पूरी, लेकिन उसकी हदूद हैं और जहां आपकी हदूद शुरू हो जाती है वहां इंतजामिया दखल नहीं दे सकती। इसलिए आने वाले मेहमान खुसूसियत के साथ इन बातों में भी बेदार नजर हैं। आखिरी बात जो मैं कहनी चाहता हूं वो मेहमान नवाजी से मुतल्लिक अहले रब्बा को अमूमी तहरीर करना चाहता हूं। मेहमान नवाजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन अब ये एक दो बातें ऐसी हैं जो मेहमान नवाजी की आला कदरों से ताल्लुक रखती हैं। और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मेयार हमारे सामने रखा है वो बार बार जनात के सामने पेश करना जरूरी है ताकि इस आला मेयार को पेश नजर रखकर हम अपनी तरबियत करें। हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहेब कपूर थलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, एक दफा दो शख्स मणिपुर आसाम से कादियान आए और मेहमान खाना में आकर उन्होंने खादिमान मेहमान खाना से कहा कि हमारे बिस्तर उतारे जाएं और सामान लाया जाए, चरपाई बिछाई जाए। ऐसा यहां भी होता कई दफा, और मुझे इल्म है कि अल्लाह ताला के फजल से लंबी तरबियत के नतीजे में अब कारकुनान दौड़ दौड़ कर सामान उठाते हैं और उतारते हैं, और ये नहीं उधर पेश करते कि मजदूर नहीं है। अगर हम मजदूर नहीं है तो मजदूर लेके आओ या खुद उतारो। मगर उस जमाने में जो मुलाजिम थे मेहमान खाने के, उनकी भी पूरी तरबियत नहीं हुई हुई थी, तो उन्होंने आगे से खादिमों ने यह जवाब दिया कि आप खुद अपना सामान उतारें, चरपाइयां भी मिल जाएंगी, देखी जाएगी। दोनों मेहमान इस बात पर इतने रंजीदा खातिर हुए कि फौरन लक्के में सवार होकर वापस रवाना हो गए। मुंशी जफर अली साहब कहते हैं कि मैंने हजरत मौली अब्दुल करीम साहब से जिक्र किया तो मौली साहब फरमाने लगे, जाने भी दो, ऐसे जल्दबाजों को जाते हैं तो जाए। हुजूर को इस वाक्य का इल्म हुआ तो नहायत जल्दी से, ऐसी हालत में कि जूता पहनना भी मुश्किल हो रहा था, हुजूर उनके पीछे नहायत तेज कदम से चल पड़े। चंद खुदाम भी हमराह हो गए, मैं भी साथ था। नहर के करीब जो 2.5 मील के फासले पर है, उनका उनके यके को जा लिया और हुजूर को आता देखकर वो खुद यके से उतर पड़े। हुजूर ने उन्हें वापस चलने के लिए फरमाया कि आपके वापस होने का मुझे बहुत दर्द पहुंचा है। चुनांचे वो वापस हुए। हुजूर ने यके में सवार होने के लिए उन्हें फरमाया और साथ साथ फरमाया कि मैं साथ साथ चलता हूं, मगर वो शर्मिंदा थे और वो सवार न हुए। इसके बाद मेहमान खाने पहुंचे, हुजूर ने उनके बिस्तर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर खुद्दाम ने हुजूर को ऐसा न करने दिया और खुद उतारा। हुजूर ने उसी वक्त 2 निवाड़ी पलंग मंगवाए और उनके बिस्तर उन पर करवाए और उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, और फिर खुद ही फरमाया क्योंकि उस तरफ यानी आपके इलाके की तरफ चावल खाए जाते हैं, और रात को दूध के लिए भी पूछा गर्जी के, क्योंकि चावल खाए जाते हैं इसलिए चावल मैं खुद ही भिजवा दूंगा, और फिर दूध के लिए पूछा गर्जी के। उनकी तमाम जरूरियात अपने सामने मुहैया फरमाई और जब तक खाना आया वहीं ठहरे रहे। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स जो इतनी दूर से आता है, रास्ते की तकालीफ और सऊबतें बर्दाश्त करता है, यहां पहुंचकर समझता है कि अब मैं मंजिल पर पहुंच गया, अगर यहां आकर भी उसको वही तकलीफ हो तो यकीनन उसकी दिल शिकनी होगी। हमारे दोस्तों को इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जब तक वो मेहमान ठहरे रहे, हुजूर का ये मामूल था कि रोजाना 1 घंटे के करीब उनके पास आकर बैठते और तकरीर वगैरह फरमाते। जब वो वापस चले तो सुबह का वक्त था। हुजूर ने 2 गिलास दूध के मंगवाए और फरमाया ये पी लीजिए, और कुछ देर तक उनको छोड़ने के लिए साथ गए। रास्ते में बार बार उनसे फरमाते रहे कि आप तो मुसाफिर हैं, आप यक्के में सवार हो लें, मगर वो सवार न हुए। चुनाचे इसी नहर पर जाकर उनको रुख्सत किया जहां से लेके आए थे। हजरत मुंशी जफर अहमद साहेब कपूरथली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और भी रवायत है, तो कहते हैं एक दफा जलसा सलाना पर बहुत से आदमी आए थे, और इस रवायत का तो खास जलसा सलाना से ही ताल्लुक है। जिनके पास कोई पारचा सरमाई न था, ऐसा हो जाता है, चुनाचे गुज़श्ता चंद सालों से मेहमान नवाजी का शोभा मेरे स्कूल चूंकि किया गया था, हमने ये इंतजाम किया कि इर्द गिर्द की जमातों से बिस्तर मंगवा कर यहाँ रखे जाएं, ताकि कुछ मेहमान जो बगैर बिस्तर के आ जाते हैं, मसलन अफगानिस्तान से बाद मेहमान आते थे जो बगैर बिस्तर के आते थे, उनके लिए मुश्किल था उठाना, तो उनके लिए बिस्तर मुहैया किए जाएं। इसी तरह अफसर साहब जलसा ने बहुत से जायद बिस्तर बनवा के रखे होते हैं, तो वो सारे खत्म होने के बावजूद जो जायद इंतजाम था वो भी बीच में काम आ गया, और अल्लाह ताला के फजल से उसके नतीजे में मेहमानों को तकलीफ नहीं पहुंची। तो ये हो जाता है, लेकिन आने वालों को भी अब ये ख्याल करना चाहिए कि अब जलसे की हदूद फैल गई है और इतना वसत इख्तियार कर चुका है कि अब किसी मेजबान के बस में नहीं रहा कि ख्वाहिश भी करे चाहे भी तो उनकी बिस्तरों की जरूरियात कमा हफ्ते पूरी कर सके। इसलिए खुद अपनी तकलीफ की खातिर और कुछ मेजबानों की तकलीफ की खातिर कि जो मेजबान ये देखता है कि मैं अपने मेहमान की जरूरत पूरी नहीं कर सकता उसे बड़ी शदीद तकलीफ पहुंचती है, बड़ा दुख महसूस कर रहा होता है। इस तकलीफ की खातिर वो हतल मकदूर अपने बिस्तर साथ लाया करें। बहरहाल ये रिवायत जो रिवायत में पढ़ रहा हूं उसमें जिक्र आता है कि ऐसे मेहमान आ गए जिनके पास बिस्तर नहीं था। चुनाचे एक शख्स नबी बख्श नंबरदार साकिन बताला ने अंदर से लिहाफ बिछाने मंगाने शुरू कर दिए और मेहमानों को देता रहा। ईशा के बाद हजरत साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप बगलों में हाथ दिए बैठे थे और एक साहबजादा जो गालबन हजरत मुस्लिम माहौल खलीफतुल मसीसानी लिखा है अपने खलीफतुल मसीसानी थे पास लेते थे और एक चोरा उन्हें उड़ा रखा था। मालूम हुआ कि आपने भी अपना लिहाफ और बिछौना तलब करने पर मेहमानों के लिए पेश कर दिया था। मैंने अर्ज की कि हजूर के पास तो कोई पाचा नहीं रहा और सर्दी बहुत है। फरमाने लगे कि मेहमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारा क्या है, रात गुजर ही जाएगी। नीचे आकर मैंने नबी बख्श नंबरदार को बहुत बुरा भला कहा कि तुम हजरत साहब का लिहाफ और बिछौना भी लिया है। वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि जिसको दे चुका हूं उससे किस तरह वापस लूं। फिर मैंने मुफ्ती फजल रहमान साहेब या किसी और से याद नहीं रहा कौन था लिहाफ बिछौना मांग कर जब ऊपर लेके गया तो आपने फरमाया किसी और को दें, मुझे तो अक्सर नींद भी नहीं आती और मेरे इसरार पर भी आपने वो ना लिया और फरमाया किसी मेहमान की जरूरत पूरी करें। ये एक मेहमान नवाजी का मेयार है जो हमारे सामने एक मनसब बनकर एक मकसूद बनकर सामने चमक रहा है। इस मेयार के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए और मैं जानता हूं कि अब ये मिसालें आम हो गई हैं अल्लाह ताला के फजल से। रवा नहीं गुज़श्ता तजर्बों की बिना पर मैं यकीन से आपको बता सकता हूं कि ऐसी मिसालें हैं कि अपने घर छोड़कर लोग बाहर निकलकर सेनों में सोए, अपने बिस्तर देकर इसी तरह हाथ बगलों में दबाकर उन्होंने रात गुजारी, कारकुनों में भी और गैर कारकुनान में भी अब ये मिसालें आम हैं। लेकिन ये भी वो हसीन विस्सा है जो हजरत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से हमने पाया। एक दफा मेहमान नवाजी के इंतजाम में रात 1-2 बजे के करीब एक कारकुन को मैंने कहा कि अब आप जाएं और आराम करें, तो वो चले गए। कुछ देर के बाद 19 घंटे के बाद देखा तो फिर वापस आ गया। मैंने उनसे कहा कि आप वापस आ गए, क्या बात है, आराम नहीं किया। उन्होंने कहा यहाँ ज्यादा आराम है, यहाँ बैठने की कमरा है, कुर्सी है, बैठने की जगह है, वहां तो मेहमान इतने हैं कि दरवाजा खोलने की भी ताकत नहीं रही। इन्हें जब मैं दरवाजे को धक्का देता था तो किसी मेहमान को तकलीफ पहुंचती थी, तो इसलिए मैं आ गया हूँ, रात इसी तरह कटेगी। तो अब ये मिसालें आम हो गई हैं। ये रूहानी हुस्न की का यही एक इम्तियाज है कि वो अपने वजूद तक नहीं रहता, उस शमा से सैकड़ों हजारों दूसरी शमें रोशन होने लगती। तो ये शमें रोशन हो रही हैं, होती रही हैं और इस दफा भी होंगी इंशाअल्लाह ताला और आइंदा भी होती रहेंगी। अल्लाह ताला अपने फजल के साथ हमें मेहमान नवाजी के नहायत ही आला और हसीन तकाजे पूरे करने की तौफीक बख्शे।
الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.